नूर बेहद परेशान थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे जब उसने जल्दी से सादिया को फोन मिलाया। भाभी, मुझे किसी ने बताया ही नहीं, क्या हुआ? उसकी आवाज घबराहट से भरी हुई थी। नूर, तुम पागल हो गई हो क्या? सादिया की आवाज में थकान और झुंझलाहट दोनों थी। यहां सब इतने परेशान हैं, घर में मौत हुई है, किसे याद रहेगा तुम्हें बताना? नूर एक पल के लिए चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, मैंने अरमान को भी फोन किया था, उसने भी नहीं उठाया। सादिया को जैसे अचानक याद आया, उसने गहरी सांस ली। उसके डैड की डेथ हुई है नूर, फोन साइलेंट पर होगा, फिक्र मत करो, घर पर सिक्योरिटी है और सकीना भी वहीं है। तभी रेहाना बेगम वहां आ गईं। किसका फोन है? उन्होंने पूछा। नूर का, सादिया ने फोन उनकी तरफ बढ़ा दिया। रेहाना बेगम ने फोन लिया, आवाज को थोड़ा नरम करते हुए बोली, हाँ नूर, ठीक हो तुम? जीत आई अम्मी, मैं कॉलेज से आई तो पता चला नासिर अंकल नहीं रहे, बहुत बुरा लगा। नूर की आवाज भर्रा गई थी। हम लोग इतनी परेशानी में थे कि तुम्हें बताना ही याद नहीं रहा, रेहाना बेगम ने थके हुए लहजे में कहा। थोड़ा रुककर उन्होंने आगे कहा, नूर, हमें यहाँ 2-3 दिन लग जाएंगे, तुम अपने घर चली जाना ड्राइवर करीम के साथ। नूर घबरा गई, लेकिन ताई अम्मी, मैं घर कैसे जा सकती हूँ, मेरे एग्जाम चल रहे हैं, कल भी पेपर है। ओ, रेहाना बेगम जैसे एकदम चौंक गई, मुझे तो याद ही नहीं रहा। फिर उन्होंने संभलते हुए कहा, ऐसा करो, कल यूनिवर्सिटी से एग्जाम देकर सीधे घर चली जाना, और जब तक हम नहीं आते वहीं से एग्जाम देना। और सुनो, उनकी आवाज में अब हल्की चिंता थी, रात को अकेली मत सोना, सकीना को अपने कमरे में सुला लेना। जी, नूर ने धीरे से कहा, ठीक है, मुझे काम है, बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर रेहाना बेगम ने फोन काट दिया। उसी वक्त फरीद खान उन्हें बुलाने आ गए थे। असल में फरीद खान रेहान को वापस भेजने का फैसला कर चुके थे। ऑफिस में अचानक आई प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि उसका जाना बेहद जरूरी हो गया था। जैसे ही रेहाना बेगम को पता चला, उन्होंने तुरंत एतराज किया, ये क्या कह रहे हैं आप, आज ही नासिर भाई की मौत हुई है और आप रेहान को भेज रहे हैं? उनकी आवाज में नाराजगी के साथ दर्द भी था। लोग क्या कहेंगे, जुबेदा बेगम, अरमान, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा। फरीद खान ने गहरी सांस ली, खुद को संभालते हुए बोले, और कोई रास्ता नहीं है रेहाना, इसका जाना बहुत जरूरी है, वरना हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। रेहाना बेगम खामोश हो गईं, उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो दिल और हालात के बीच फंसी हुई हैं। तभी रेहान आगे बढ़ा, मॉम, जाना बहुत जरूरी है, मैं भी नहीं जाना चाहता लेकिन जाना पड़ेगा। कुछ पल की खामोशी के बाद रेहाना बेगम ने धीरे से सिर हिला दिया, ठीक है। सादिया पास ही खड़ी थी, चुपचाप सब सुन रही थी। घर का माहौल पहले ही भारी था और ये बात उसे और बेचैन कर रही थी। फरीद खान ने रेहान की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा करो, जो पहली फ्लाइट मिले उसी से निकल जाओ, आज शाम की मीटिंग हर हाल में करनी होगी। ठीक है डैड, रेहान ने हल्की आवाज में जवाब दिया। फैजान अकेडमी ज्वाइन कर चुका था। दिन भर की ट्रेनिंग के बाद जब उसने फोन देखा तो सादिया की कॉल्स मिस हो चुकी थीं। उसने मैसेज चेक किया, फिर एक वॉइस नोट प्ले किया। फैजान, नासिर खान चाचा नहीं रहे। आवाज सुनते ही उसका दिल जैसे बैठ गया। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रह गया, समझ ही नहीं पाया क्या रिएक्ट करे। रात गहरी हो चुकी थी, घर में सन्नाटा था। जब अरमान थोड़ा फ्री हुआ तो उसने नूर का नंबर मिलाया। फोन उठते ही नूर की भरी हुई आवाज आई, एक बार मेरा फोन तो उठा लेते अरमान, मैं कितनी परेशान हो गई थी। अरमान ने आंखें बंद कर ली, पता नहीं, मेरा मन ही नहीं किसी से बात करने का, और तुम तो वैसे भी मुझसे नाराज थी। कुछ पल दोनों तरफ खामोशी रही, फिर नूर ने धीरे से कहा, नाराज थी लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम्हें जरूरत हो और मैं ना समझूं। अरमान के लहजे में थकान थी, आज सब कुछ बहुत अचानक हो गया। मुझे पता है, नूर ने नरमी से कहा। दोनों कुछ देर तक यूं ही बात करते रहे, कम शब्दों में लेकिन बहुत कुछ कह जाते हुए। अरमान से बात करने के बाद भी नूर का दिल पूरी तरह शांत नहीं हुआ था, घर का सन्नाटा उसे अंदर तक चुभ रहा था। थोड़ी देर तक वो यूं ही बैठी रही, फिर उसने गहरी सांस ली और अपनी अम्मी का नंबर डायल कर दिया। जैसे ही फोन उठा, उधर से सुल्ताना बेगम की आवाज आई, हाँ नूर, कैसी हो तुम? नूर ने खुद को संभालते हुए कहा, अम्मी, आपको एक बात बतानी थी। क्या हुआ? उनकी आवाज में फिक्र साफ झलक रही थी। नासिर अंकल वो नहीं रहे, नूर ने धीरे से कहा। एक पल के लिए उधर बिल्कुल सन्नाटा छा गया, फिर सुल्ताना बेगम की घबराई हुई आवाज आई, क्या? और तुम हमें अब बता रही हो, दिन भर हो गया इस बात को। उनकी आवाज में नाराजगी भी थी और चिंता भी। हम अभी निकलते हैं और कल तुम्हें अपने साथ ले आएंगे। नहीं अम्मी, आप अभी मत आइए, नूर ने जल्दी से कहा। मताए क्यों? सुल्ताना बेगम की आवाज और तेज हो गई। इतने बड़े घर में तुम अकेली रहोगी? नूर हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में थकान थी। अम्मी, अब तक भी तुम्हें अकेली ही थी। फोन स्पीकर पर था, तभी उसके अब्बा की आवाज आई। हमने तुम्हें अपने घर में कभी अकेला नहीं छोड़ा, और वो तो पराया घर है, पराया शहर है। नूर ने धीरे से सिर झुका लिया, जैसे वो उन्हें देख सकती हो। अब्बा, ये हमारा छोटा सा कस्बा नहीं है, बड़ा शहर है, और इस घर में पूरी सिक्योरिटी है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा, सुल्ताना बेगम ने बेचैनी से कहा, हम अभी आते हैं। नूर ने हल्की सी झुंझलाहट छुपाते हुए कहा, अम्मी, आप बेवजह पैसे और टाइम खराब कर रही हैं। मैंने कहा ना, मैं सेफ हूँ। कुछ पल के लिए उधर खामोशी छा गई, फिर नूर ने नरमी से कहा, मैं सुबह हुड ड्राइवर के साथ निकल जाऊंगी, और अब मैं सोना चाहती हूँ, पूरा दिन बहुत थक गई हूँ, कल एग्जाम के बाद आप लोगों के पास आ जाऊंगी। उसकी आवाज में थकान के साथ एक सुकून भी था, जैसे वो खुद को भी समझा रही हो। लेकिन उसके अब्बा फिर बोले, हमें वैसे भी इस दुख की घड़ी में उनके पास जाना है, तो हम अभी ही निकल जाते हैं। नूर ने तुरंत जवाब दिया, अब्बा, जब वहां कोई है ही नहीं तो आप किसके पास आएंगे, सब लोग तो बाहर गए हुए हैं। फिर उसने थोड़ा रुककर बहुत प्यार से कहा, मैंने कहा ना, मैं आ जाऊंगी, आप बिल्कुल मेरी फिक्र मत करें। आखिरकार उसने उन्हें आने से मना कर दिया। फोन कटने के बाद नूर कुछ देर तक यूं ही बैठी रही। घर पहले से भी ज्यादा खामोश लगने लगा था। जैसे ही नूर ने फोन रखा, बाहर लॉन से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। वो चौंक गई, फौरन उठकर खिड़की की तरफ बढ़ी और पर्दा हल्का सा हटाकर बाहर देखने लगी। घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी। नूर के माथे पर हल्की सी लकीरें पड़ गईं। जब सब बाहर हैं, तो इस वक्त कौन आया है, उसने खुद से धीमे से कहा। उधर सुल्ताना बेगम गुस्से में थी। आपने उसे मना करने की बजाय उसका साथ दे दिया, उन्होंने इकबाल से नाराज होकर कहा। कोई बात नहीं, आ जाएगी, कह रही थी ड्राइवर के साथ आएगी। उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। आप उसकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, सुल्ताना बेगम ने आगे कहा। दूसरों का सामान अपना नहीं होता, वो गाड़ी, वो ड्राइवर, सब उनका है। हमारी बेटी को ऐसी आदत नहीं लगनी चाहिए। इकबाल ने उन्हें गौर से देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, मेरी बेटी पढ़ लिखकर ऑफिसर बनेगी और उसके पास गाड़ियों की लाइन होगी, देख लेना। सुल्ताना बेगम को उनकी बात पर गुस्सा तो आया, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुप हो गई। रेहान फोन पर बात करते हुए अंदर आया। उसकी आवाज से साफ लग रहा था कि वो मीटिंग के बारे में बात कर रहा था। उसी वक्त गाड़ी का हॉर्न सुनकर नूर भी अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आ गई थी। दोनों आमने सामने आ गए। तुम यहाँ? रेहान ने हल्का सा हैरान होकर कहा। उसे लगा था नूर अपने घर चली गई होगी, क्योंकि रेहाना बेगम ने यही कहा था। नूर ने धीरे से जवाब दिया,
मेरा एग्जाम था और कल भी है, इसीलिए नहीं गई।